नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत और रूस ने रक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया से जुड़े क्षेत्रों में 16 समझौते किए हैं। नई दिल्ली में 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उपस्थिति में ये समझौते हुए। इसके बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत रूस मैत्री वैश्विक चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करेगी और यही विश्वास दोनों देशों की साझा भविष्य सुनिश्चित करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद का मुकाबला करने की प्रतिबद्धता दोहराई और संयुक्त राष्ट्र सूचीबद्ध आतंकवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया।
आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन भारत रूस व्यापार मंच में शामिल हुए। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन की नीति पर दृढ़ता से चलते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में रूस के आर्थिक विकास मंत्री मैक्सिम रेशेतनिकोव के साथ बैठक की। श्री गोयल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में दोनों पक्षों ने खाद्य और कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र तथा ऑटोमोबाइल सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। सरकार ने इंडिगो की उड़ानों के परिचालन में बाधा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों की व्यापक समीक्षा के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति 15 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा कि समिति व्यापक परिचालन बाधाओं के मूल कारणों का पता लगाएगी। देश में व्यापक रूप से उड़ानें रद्द होने के बाद यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए भारतीय रेलवे ने सुगम यात्रा और पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। देश में कुल 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं। दक्षिण रेलवे ने सर्वाधिक कोच बढ़ाए हैं जिससे 18 ट्रेनों की क्षमता बढ़ी है। लोकसभा ने स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य पान मसाला और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी अन्य वस्तु के उत्पादन पर उपकर लगाकर स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए धन जुटाना है। उपकर से प्राप्त राशि का उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा पर व्यय किया जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 68,393 करोड़ रुपए से अधिक दिए जा चुके हैं। इसमें मजदूरी के लिए 57,000 करोड़ रुपए और सामग्री तथा प्रशासन के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि शामिल है। हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप में भारत ने चेन्नई में क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बेल्जियम को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दोनों टीमें फुल टाइम तक 2-2 गोल की बराबरी पर थी, जिसके बाद भारतीय टीम ने पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से जीत हासिल की। गोलकीपर प्रिंस दीप सिंह शूटआउट में कुछ अविश्वसनीय बचावों के साथ मैच के हीरो बने। प्रिंस दीप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। शारदानंद तिवारी ने भी भारत के लिए शूटआउट में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 3 गोल किए जबकि अंकित पाल ने भारत के लिए विजयी गोल दागा। भारत का सामना सेमीफाइनल में कल 7 बार की विश्व कप विजेता जर्मनी से होगा। भारत ने 2 बार ये खिताब अपने नाम किया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर 1:30 बजे से विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। दोनों टीमें श्रृंखला में 1-1 की बराबरी पर हैं। ऐसे में ये मुकाबला श्रृंखला के विजेता का फैसला करेगा। दिल्ली की एक विशेष अदालत आज प्रवर्तन निदेशालय ईडी की दलीलों पर सुनवाई कर सकती है। ये सुनवाई ईडी द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के संबंध में है, जिसमें निदेशक ने ब्रिटेन स्थित रक्षा डीलर संजय भंडारी से जुड़े धन शोधन मामले में रॉबर्ट वाड्रा को आरोपी बनाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।